दिन भर सोमवार 24 अगस्त मैं हूं रेहान फतल। भारतीय शेयर बाजार ने कई साल बाद एक दिन में सबसे बड़ा खोता लगाया।
इस तरह की गिरावट लगातार नहीं चल सकती। हाँ, अगर कल भी अगर गिरावट का दौर जारी रहा तो शायद बाजार में लिक्विडिटी बड़ी कम हो जाएगी, खरीदार नहीं रहेंगे।
संयुक्त राष्ट्र ट्राइब्यूनल ने इटालवी नौसैनिक मामले में सारी कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए कहा। बात करेंगे भारत में प्याज की कमी और राजनीति पर।
प्याज अभी भी मार्केट में काफी मात्रा में उपलब्ध है, शॉर्टेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। व्यापारियों के पास स्टोर किया हुआ है और ये हर साल ये व्यापारी ये पीरियड में आर्टिफिशियली रेट बढ़ा के मार्केट में लाते हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। चीनी शेयर बाजार की सुस्ती को लेकर निवेशकों की चिंता का असर दुनिया भर के कई शेयर बाजारों पर देखा गया। लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट के सूचकांक दोपहर तक 3-5% तक गिरे। चीन के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई। शंघाई इंडेक्स 8.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। चीनी मीडिया में आज की गिरावट को देखते हुए ब्लैक मंडे का नाम दिया जा रहा है। वहीं भारतीय शेयर बाजार ने भी कई साल बाद एक दिन में सबसे बड़ा गोता लगाया। सेंसेक्स आज 1624 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने शरणार्थियों के लिए बनाए गए एक सदन के बाहर हिंसक प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए इन्हें शर्मनाक बताया है। जर्मनी के पूर्वी शहर हेदनेऊ में कई दिनों से चल रहे प्रदर्शनों में दक्षिणपंथी विद्रोहियों ने शरणार्थियों को पनाह देने के लिए बनाए गए एक सदन के बाहर बोतलें फेंकी और पटाखे जलाए, जिससे 30 पुलिस अफसर घायल हो गए। जर्मनी के डिप्टी चांसलर सिगमर गैब्रियल ने प्रदर्शनकारियों की आलोचना की। इन दक्षिणपंथी विद्रोहियों का जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने देश को ऐसा जर्मनी नहीं बनने देना चाहते। वो सोचते हैं कि वो ही जर्मनी के सच्चे प्रतिनिधि हैं, लेकिन सच ये है कि ये लोग जर्मन नहीं हो सकते। ये थे जर्मनी के डिप्टी चांसलर सिगमार गैब्रियल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ग्रीस की विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रेसी ने कहा है कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए उसे किसी पार्टी का सहयोग नहीं मिला है। पिछले हफ्ते ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के इस्तीफा देने के बाद ग्रीस में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की कवायद शुरू हो गई है। ग्रीस की संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी पॉपुलर यूनिटी पार्टी अब सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। पिछले हफ्ते सत्तारूढ़ सिरिज़ा पार्टी से अलग हुई पॉपुलर यूनिटी पार्टी ग्रीस के अंतर्राष्ट्रीय बेलआउट समझौते के खिलाफ है। नेपाल के दक्षिण तराई इलाकों में थारू समुदाय के साथ संघर्षों में 7 पुलिस वालों की मौत हो गई है और उसके बाद सेना को यहां तैनात कर दिया गया है। कैलाली जिले में थारू प्रदर्शनकारियों के कर्फ्यू तोड़ने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। ये लोग संविधान में ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जबकि गृहमंत्री ने इन पर पुलिस को घेर कर कुल्हाड़ियों और रॉड से पीटने और जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। नेपाल में नया संविधान लिखने की प्रक्रिया में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के इरावन मंदिर के पास हुए धमाके की जांच में अभी काफी धीमी गति से काम हो रहा है। पुलिस अध्यक्ष सोम्योत पुनपांग मुआंग ने कहा है कि शहर के 4 सुरक्षा कैमरों में से एक ही काम कर रहा है, जिसकी वजह से जांच तेजी से आगे नहीं बढ़ रही। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। दलाल स्ट्रीट पर आज दिन भर हाहाकार मचा रहा। बंबई शेयर बाजार में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1624 अंक टूटा, जिससे निवेशकों को करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की पूंजी से हाथ धोना पड़ा। चीन के शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट का सिलसिला चलने के बीच वैश्विक बाजारों में भी भारी उथल पुथल देखी गई। 21 जनवरी 2008 के बाद से ये सेंसेक्स में एक दिन में तीसरी सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली और रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय बाजारों का आधार मजबूत है, लेकिन इस दिलासे का बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ा। रोहित जोशी की रिपोर्ट।
7 जनवरी 2009 के बाद प्रतिशत के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में 5.94% के साथ ये सबसे बड़ी गिरावट है। बीएसई सोमवार को 25,741.56 अंक पर बंद हुआ, जो कि 11 अगस्त 2014 के बाद किसी एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं निफ्टी भी 490.95 अंक गिरकर 7,809 अंक पर बंद हुआ। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस गिरावट की वजह से एक ही दिन में निवेशकों के करीब 7,00,000 करोड़ रुपये डूबने की आशंका है। इस बीच भारतीय रुपये की भी कीमत गिरकर $1 के मुकाबले 66.74 रुपये पहुंच गई है। सितंबर 2013 के बाद से रुपये में ये सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा संकट पर कहा है कि भारतीय बाजार पर जो भी असर है वो कुछ ही समय के लिए है और ये बाहरी कारणों से है। उन्होंने कहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सरकार ने जो रोड मैप चुना है उस पर ही आगे बढ़ते रहने की जरूरत है।
There has been for the last few days a great amount of turbulence which has been caused in the global
पिछले कुछ दिनों से वैश्विक बाजारों में भारी अस्थिरता है और इसका स्वाभाविक रूप से भारतीय बाजार में भी प्रभाव पड़ा है। यह अस्थिरता पूरी तरह से बाहरी कारणों से आई है। भारत में अंदरूनी तौर पर एक भी कोई ऐसा कारण नहीं है जिसने इस पर असर पहुंचाया हो या इसे बढ़ाने में योगदान दिया हो। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि ये अस्थिरता बहुत ही अस्थायी है और बेहद कम समय के लिए होगी। बाजार फिर से स्थिर हो जाएगा। भारत सरकार और रिजर्व बैंक इन हालातों पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ये थे वित्त मंत्री अरुण जेटली के शब्द। चीन के शेयर बाजार में भी तेजी से गिरावट आ रही है और अस्थिर बाजार से ट्रेडर्स में भी घबराहट फैल रही है। शंघाई इंडेक्स 8.5% गिरकर बंद हुआ है। जून के मध्य से अब तक चीनी बाजार तकरीबन 1/3 अंक गिर चुका है। सोमवार को बाजार बंद होते होते तमाम एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं यूरोपीय बाजार भी गिरावट के साथ ही खुले।
शेयर बाजार में भारी गिरावट। हमारे साथी अनुराग शर्मा ने बाजार विशेषज्ञ और वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सीईओ धीरेन्द्र कुमार से संपर्क किया और पूछा कि शेयर बाजार में ये गिरावट तात्कालिक है या लंबे समय तक रहने वाली है।
पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि विदेशी निवेशकों का रुख क्या होता है, लेकिन ये बहुत समय तक नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर आज जिस तरह का गिरावट देखा गया है 7-8%, 9% बड़ी बड़ी कंपनियों के, हमारा बाजार आज करीब बड़ी कंपनियों के शेयर 10-12% भी बहुत सारी कंपनियों का में गिरावट देखा गया है, तो इस तरह की गिरावट लगातार नहीं चल सकती। हाँ, अगर कल भी अगर गिरावट का दौर जारी रहा तो शायद बाजार में लिक्विडिटी बड़ी कम हो जाएगी, खरीदार नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बाजार में इस तरह का रुख भारतीय बाजार में ये लगातार चलता रहेगा, और बाजारों का मुझे अंदाज नहीं है।
सर, ये बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मोटे तौर पर इसके क्या मायने हैं? क्या चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, ये दिख रहा है इससे?
इससे क्लियरली ये लग रहा है कि चीनी अर्थव्यवस्था को चीनी सरकार अपने कदमों से दोबारा उसको रीएक्टिवेट करने में उस तरह से सक्षम नहीं रही है, और चाइना में बाजार काफी इम्पोर्टेंट हो गया है। करीब 7-8% बाजार में भागीदारी आम चीनी निवेशकों की या चीनी नागरिकों की है, जो पहले नहीं था। तो सरकार का ये रुख रहा है कि सरकार कुछ बदलाव ला सकेगी, सरकार बाजार में किसी बाजार को इन्फ्लुएंस कर पाएगी दोबारा से, और इसको एक बैरोमीटर की तरह देखा जा रहा है कि चीनी सरकार सक्सेसफुल है अगर बाजार में स्थिरता है तो। उसके बावजूद भी चाइनीज मार्केट में इस तरह की गिरावट, ये बहुत ही चिंताजनक है, और जिस तरह का कम कॉन्फिडेंस चीनी बाजार ने पैदा किया है, हम वहाँ के बैंकिंग नंबर्स के बारे में लोग आशंकित हैं, वहाँ पे बाजार में लोगों की भागीदारी उस तरह की ओपन तरीके से नहीं है जिस तरह की दुनिया भर के निवेशकों की भारतीय बाजार में है, जिस तरह से इकोनॉमिक नंबर्स और कंपनियों के नंबर्स आते हैं उसके बारे में भी लोगों को शक होता है कि ये किस हद तक सही है। ये अपने आप इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को कम करती है, और जब विदेशी निवेशक पैसा लगाता है तो वो ज्यादा अंतर नहीं रखता है, वो देखता है चाइना में लगा रहा है, इंडिया में लगा रहा है और बाकी इमर्जिंग मार्केट में लगा रहा है, लेकिन अलग अलग बाजार में बड़ा अंतर है, और मुझे लगता है कि जब ये अंतर लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जब ये अंतर को नाप पाएंगे कि ये कितना बड़ा अंतर है, तो मुझे लगता है कि भारत उसमें काफी आगे होगा।
क्रूड ऑयल के प्राइसेस 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, और दूसरी तरफ ये भी है कि रुपये की कीमत जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत सबसे अपने रिकॉर्ड स्तर पहुंच गई, 66 रुपये तक पहुंच गया। इन दोनों चीजों का कोई आपस में कोई संबंध है, और भारत की आम जनता के लिए क्या मायने हैं इनके? क्या कोई महंगाई कम होगी, बढ़ेगी, क्या होगा?
पूरी तरह से निर्भर करता है कि रिजर्व बैंक क्या रुख रखता है। जिस तरह का डिवैल्यूएशन चाइना में देखा गया है, और अगर ये दौर जारी रहता है तो रिजर्व बैंक मजबूर हो जाएगा हमारे रुपए को डिवैल्यू करने के लिए, और अगर ऐसा करता है तो जो क्रूड ऑयल के दाम में हम कमी देख रहे हैं वो केवल भारत की वजह से नहीं है। भारत जरूर एक दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ा इम्पोर्टर है, एक बड़ा ग्राहक है, लेकिन अगर हमारा रूपी, अगर हमारा करेंसी डिवैल्यू होता है तो मुझे लगता है कि ये मार्जिनली ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो देश तेल प्रोड्यूस करते हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, और हमारे जैसे हमारी इकोनॉमी जो कि काफी ज्यादा निर्भर है इस पे, उसे खासा फायदा हुआ है।
ये थे वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सीईओ धीरेंद्र कुमार। संयुक्त राष्ट्र ट्राइब्यूनल ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या के अभियुक्त इतालवी नौसैनिकों की भारत में सुनवाई को चुनौती देने वाली इटली की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दोनों देशों को इस मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए कहा है। इन नौसैनिकों पर फरवरी 2012 में केरल के नजदीक समुद्र में दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है। रोहित जोशी की रिपोर्ट।
इटली की सरकार इसी साल जून में समुद्री सीमा कानून के अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल में इस मामले को लेकर गई थी। यूएन ट्राइब्यूनल ने इस पर फैसला सुनाते हुए दोनों ही देशों से कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए कहा है। साथ ही ट्राइब्यूनल ने दोनों देशों से 24 सितंबर तक इस मामले में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। इटली चाहता था कि ट्राइब्यूनल भारत को आदेश दे कि वो उसके दो नौ सैनिकों की आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध उठा ले और तब तक इस मामले में कोई कार्रवाई न करे जब तक कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। ट्राइब्यूनल के इस फैसले पर इटली में भारत के राजदूत रहे राजीव डोगरा कहते हैं,
मुझको ये लगता है कि अभी कोई डेफिनेटिव ओपिनियन फॉर्म करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि फैसले में उन्होंने कहा है कि दोनों देश दोबारा उनके पास आए 24 सितंबर तक और उसके बाद वो अगले कदम उठाएंगे। तो ये कहना कि ये भारत की जीत हुई है या इटली की जीत हुई है या दोनों को कुछ ना कुछ मिला है तो ये गलत होगा। पर एक चीज इसमें साफ नजर आती है कि जितना इटली ने इसमें दाव पेंच लगाए हैं उससे ट्रायल जो प्रोसेस है विशेष भी हो रहा है, वो उतना डिले भी हो रही है। तो अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सर्व करना चाहते हैं तो किसी देश को या किसी इंस्टीट्यूशन को डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं लगाने चाहिए।
इतालवी नौसेना के मैसी मिलानो लातोरे और सल्वाटोर गिरोने नाम के दो सैनिकों पर फरवरी 2012 में केरल के नजदीक समुद्र में दो भारतीय मछुआरों वेलेंटीन और अजेश बिंकी की हत्या का आरोप है। लेकिन इतालवी नौ सैनिकों का कहना है कि उन्होंने मछुआरों को गलती से समुद्री डाकू समझकर गोली चलाई थी। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये पहले ही बता चुकी है कि दोषी पाए जाने पर भी दोनों को मौत की सजा नहीं होगी। वहीं इटली की सरकार कहती आई है कि ये घटना भारत की समुद्री सीमा के बाहर हुई और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता होनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र ट्राइब्यूनल का इटालवी नौसैनिकों पर फैसला। प्यास के मुद्दे की उतनी ही परतें हैं जितनी खुद प्यास में। प्यास पर राजनीति होती है, सरकारें गिर जाती हैं और जमाखोरी के इल्जाम वाले नेताओं व्यापारियों के नेक्सस के बावजूद सरकार कुछ नहीं कर पाती और लगभग हर साल इसी समय इसके दाम बढ़ जाते हैं। क्या प्यास की कमी है? क्या सरकार के आयात के ऐलान से कोई फर्क पड़ेगा? प्याज के बढ़ते दाम पर सुबह रहमत की रिपोर्ट।
हम साल के उस महीने में आ पहुंचे हैं जब प्याज का भाव अचानक से आसमान को छूने लगता है। इन दिनों प्याज कहीं 60 रुपए किलो बिक रहा है तो कहीं 80 रुपए। सरकार ने प्याज आयात करने की घोषणा की है और निर्यात पर अंकुश लगाया है। प्याज का दाम उसी समय बढ़ता है जब इसकी कमी होती है। लेकिन राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संस्था के चेयरमैन डॉक्टर आरपी गुप्ता कहते हैं, देश में प्याज की कमी नहीं है, गोदामों में प्याज भरा पड़ा है।
अभी तो प्रोडक्ट है, स्टोरेज में रखा हुआ है,
मार्केट में मंडी में नहीं आ रहा।
मंडी में भाई बताया ना कि एंटीसिपेशन होता है लोगों का।
जी
भाई, एंटीसिपेट ये कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है और दिनों तक चले और भी हमको पैसा मिले, लोगों के ऐसी वो होती है।
दूसरे शब्दों में जमाखोरी का सिलसिला शुरू हो गया है। नासिक में किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले किसान कार्यकर्ता गिरिधर पाटिल कहते हैं, प्याज के थोक व्यापारी और नेताओं के बीच एक नेक्सस बना हुआ है। उनका दावा है कि इस नेक्सस ने जमाखोरी करके प्याज का दाम बढ़वा दिया है।
बात ऐसी है कि प्याज अभी भी मार्केट में काफी मात्रा में उपलब्ध है।
मतलब शॉर्टेज नहीं है?
शॉर्टेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। व्यापारियों के पास स्टोर किया हुआ है और ये हर साल ये व्यापारी ये पीरियड में आर्टिफिशियली रेट बढ़ा के मार्केट में लाते हैं। ऑल ओवर इंडिया होता है ये।
तो ये शॉर्टेज क्रिएट किया है आर्टिफिशियली इन्होंने? मतलब जो मंडी में नहीं ला रहे हैं धीरे धीरे करके ला रहे हैं या रोक रोक के ला रहे हैं?
अभी कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिसर्स भेजे थे इनके स्टॉक चेक करने के लिए, तो आज 25% फ्लो बढ़ गया है मार्केट में ओनियन का डर के, व्यापारियों ने जो स्टोर करके रखा था तो अभी मार्केट में आ रहा है।
राजीव मनियार नवी मुंबई में प्याज और आलू के व्यापार से जुड़े हैं। वो प्याज और आलू के व्यापारियों के संगठन के सचिव हैं और कहते हैं कि जमाखोरी का इल्जाम गलत है।
सर आप देखिए, कोई भी एपीएमसी मार्केट से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को सेक्रेटरीज को रिपोर्ट ले लीजिए, कोई भी एपीएमसी मार्केट में स्टॉक नहीं होता है। ट्रेडर्स एपीएमसी मार्केट में जो भी ट्रेड करते हैं उनको यहाँ पे सुबह माल जो आता है वो शाम तक पूरा क्लियर हो जाता है। शाम को एपीएमसी में जितने भी मर्चेंट्स हैं उनके पास में किसी के पास में स्टॉक नहीं रहता, सबके गोडाउन खाली रहते, सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाता है।
अच्छा।
तो हमको व्यापारियों को होल्डिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है ना।
केंद्र सरकार ने 10,000 टन प्याज आयात करने का ऐलान किया है, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ होने की संभावना कम है। आयात किए हुए प्याज मंडी में 15 सितंबर से पहले नहीं आ सकेंगे। थोक मंडी में आयात किए हुए 1 किलो प्याज का दाम 45 रुपए से कम नहीं होगा, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। राजीव बनियार कहते हैं कि प्याज का आयात निजी व्यापारी पहले से ही कर रहे हैं। मिस्र और अफगानिस्तान से रोज प्याज आयात हो रहा है। गिरिधर पाटिल के मुताबिक आयात बढ़ने या निर्यात पर रोक लगाने से केवल वक्ती फायदा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि सरकार दूरंदेशी से काम ले और प्याज के इस संकट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक बड़ा ठोस कदम उठाए। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। नेपाल से खबरें आ रही हैं कि वहां संविधान पर उठे विवाद के चलते कैलाली इलाके में भीड़ ने हमला कर 8 पुलिसकर्मियों को मार डाला है। मैंने थोड़ी देर पहले नेपाली सेवा के महेश आचार्य से बात कर इस घटना का विवरण मांगा।
अब शाम तक के डिटेल्स के अनुसार जो नेपाल के वेस्टर्न पार्ट के कैलाली जिला के टीकापुर में हुए गए घटना में 8, जैसे आपने बताया कि 8 पुलिसकर्मी की जान जाने की खबर है, जिसमें आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग भी है उसमें। घटना ऐसा हुआ कि कुछ दिन से जो इस संघीयता का मॉडल था मेजर 3 पार्टीज ने प्रपोज किया है उसके विरुद्ध में प्रदर्शन हो रहा था, और स्पेशली थारू कम्युनिटी जो लोकल कम्युनिटी है वो विरोध कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनके जो आबादी ज़्यादा जो जिला में है वो एक ही प्रदेश में गाबा जाए। और उस प्रदर्शन को ले के क्रम में आज पुलिस के जो निषेधित क्षेत्र तोका गया था और उसमें पुलिसकर्मी को घेर कर जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने पत्थर या घरेलू हाथ हथियार का प्रयोग करने की खबर आ रही है। मैंने नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता लक्ष्मी ढकाल से भी बात किया था, उनके ये कहना था कि हाथ हथियार भाला ऐसे जो हथियार है उसके कारण पुलिसकर्मी की जान गई है। और नेपाल के गृह मंत्री वामदेव गौतम ने आज संसद को भी संबोधन किया था और संसद को ये जानकारी उन्होंने देकर ये कहा कि घटना को जो नियंत्रण में लेने के लिए नेपाली सेना को परिचालित भी किया गया है,
यानी नेपाल की सेना को भेजा गया। इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ खबरें हैं?
अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। ऐसा खबर आया है कि जो प्रदर्शनकारी है उनकी तरफ भी कुछ हताहती हो सकता है, और मुझे लगता है आज रात तक ही हमको वेट करना पड़ेगा ये पिक्चर क्लियर होने के लिए।
आपको लगता है ये आंदोलन और बढ़ने की संभावना है?
जब 4 पार्टी मेजर पार्टीज थे उन्होंने कुछ हफ्ते पहले 6 प्रदेश की जो मॉडल है उसमें सहमति किया था, लेकिन नेपाल के जो मध्य पश्चिम क्षेत्र में विरोध हुआ उसका, और उसको एड्रेस करने के लिए कुछ दिन पहले ही बस 3 मेजर पार्टीज उसमें से एक तो बाहर निकल गया असंतुष्टि जाहिर करते हुए। उन्होंने 7 प्रोविंस मॉडल का जो प्रारूप है वो लेके आए, और वो 7 प्रोविंस मॉडल को भी लेकर ये थारू कम्युनिटी जो है वो खुश नहीं है, इसीलिए ये प्रदर्शन हो रहा था। और अगर आप देखें तो नेपाल के जो साउदर्न प्लेन है इंडिया से जो बॉर्डर करता है, स्पेशली साउदर्न प्लेन लेकिन नेपाल के ईस्टर्न पार्ट में, तो वहाँ भी मधेसी पार्टीज विरोध कर रहे हैं इस हिसाब से। और कुछ जो जनजातीय आदिवासी लोग हैं वो चाहते हैं कि नेपाल अगर संघीयता में जाए तो पहचान के आधार में जाए, तो इस हिसाब से अलग अलग किस्म का मांग आ रहे हैं, और ये मांग एड्रेस करने के लिए सबको एड्रेस करना पॉसिबल नहीं है।
ये थे BBC नेपाली सेवा के महेश आचार्य। आज सोमवार है और आपको इंतजार होगा अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं संदीप सोनी और राजेश प्रियदर्शी।
नमस्कार श्रोताओं, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं संदीप सोनी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश प्रियदर्शी।
नमस्कार।
बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं राजेश जी, शुरुआत कर रहे हैं फैला उजियारा, विवेचना और मोहनलाल शर्मा, इन तीनों के जिक्र के साथ कई चिट्ठियां मिली हैं।
तीनों का जिक्र एक साथ?
जी हाँ। विष्णु वर्मा है फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, विनोद कुमार की चिट्ठी आई है गिरिडीह झारखंड से, अनुराग शुक्ल रोहतास बिहार से, इन सभी ने फैला उजियारा में सम्राट अशोक, चाणक्य, गौतम बुद्ध और आर्यभट्ट के बारे में जो कुछ सुना लिखा है कि सुनकर अच्छा लगा। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने पर जो विवेचना हुई और नुसरत फतेह अली खां के बारे में जो विवेचना हुई सुनकर अच्छा लगा। बीबीसी परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।
हम आपके बहुत आभारी हैं हमारे उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने पत्र लिखा और जिन्होंने नहीं भी लिखा, जिन्हें ये कार्यक्रम पसंद आए। हमारी कोशिश यही होती है कि हम इस तरह के कार्यक्रम बनाएं जो आपको पसंद आए। जब आपकी चिट्ठियां आती हैं और इस बात की तस्दीक हो जाती है कि वाकई आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो हम महसूस करते हैं एक ख़ास किस्म की राहत कि चलिए हमारी मेहनत सार्थक रही।
अब मैं नाम तो इनका समझ नहीं पाया कि कहाँ से चिट्ठी आई है और किसने लिखी है, लेकिन शिकायती पत्र है इसलिए मैं इसे छोड़ना नहीं चाहूँगा। लिखते हैं कि विवेचना में पिछले 2-3 हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ कि आप बहुत एंटरटेनमेंट वाली विवेचनाएं ज़्यादा कर रहे हैं, क्या बीबीसी के पास गंभीर मुद्दों की कमी हो गई है?
सबसे पहले तो ये कि इनकी शिकायती पत्र है और इनकी एक शिकायत अभी फिर हो जाएगी कि हम इनका नाम नहीं पढ़ पाए, तो एक गुजारिश कि कृपया अपना नाम और पता जहाँ तक हो सके साफ लिखने की कोशिश करें ताकि हम उसको पढ़ सकें। और जहाँ तक विषय के चयन का सवाल है तो हम जाहिर है कि बहुत सारे गंभीर विषयों पर लगातार विवेचना करते रहते हैं और बीच बीच में जब ऐसा कोई मौका होता है तो सिनेमा, कला, साहित्य, इन सब विषयों से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं वो भी हम प्रसारित करते हैं। हम अपने आप को किसी ऐसे दायरे में नहीं बांधना चाहते कि विवेचना एक गंभीर कार्यक्रम है। और जब हम एंटरटेनमेंट के जो विषय हैं, जो मनोरंजन के विषय हैं, उन पर भी विवेचना करते हैं तो हम उतनी ही गंभीरता से अपनी रिसर्च करते हैं, उतनी ही गंभीरता से तैयारी करते हैं, तो मनोरंजन को भी हम गंभीरता से ही लेते हैं।
मधुबनी बिहार से कृष्ण कुमार लिखते हैं कि कई वर्षों से इंडिया बोल में फ़ोन लगा रहा हूं लेकिन आज तक फ़ोन नहीं लगा। संदीप महतो बेंगलोर से लिखते हैं कि इंडिया बोल कार्यक्रम जारी रखें, इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग लोग किसी एक मुद्दे पर क्या राय रखते हैं।
अलग अलग लोग किसी एक मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, ये संदीप महतो जी ने बेंगलोर से एक वाक्य में इसका सार हमें दे दिया है कि हम ये कार्यक्रम करते क्यों हैं। जाहिर है कि बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं कार्यक्रम से पहले, जो हमारी फ़ोन लाइन है वो लगातार व्यस्त होती है, लेकिन कृष्ण कुमार जी हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपने कोशिश की और आपका फ़ोन नहीं लगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आप कोशिश करते रहें, ज़रूर आप भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
ये सारे पत्र हमें ईमेल के ज़रिए मिले थे, पीले रंग के पोस्ट कार्ड भी हम तक लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्ट कार्ड आया है फारूक अब्दुल्ला का पूर्वी चंपारण बिहार से, ये लिखते हैं कि वुसतुल्ला खां की पाकिस्तान डायरी सुनने के लिए बेताब रहते हैं, जश्न आज़ादी के मौके पर तिरंगे बेचते छोटे बच्चों और उनकी भावनाओं पर वुसत की डायरी दिल को छू गई।
जी, ये कमाल है वुसतुल्ला खान का और वुसत वाकई बहुत ही दिलचस्प तरीके से बात पहुंचाते हैं अब तक और उनके बहुत सारे फ़ैन हैं जिनमें हमारे ये भाई भी हैं पूर्वी चंपारण के फारूक अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी ये जो तारीफ है हम वुसत भाई तक पहुंचा देंगे।
वर्षों पुराने श्रोता हैं राजेश भाई, लिखते हैं कि हमसे पूछिए कार्यक्रम दोबारा शुरू करिए, हमसे पूछिए मेरे जैसे हजारों श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रहा है।
राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया और ये कैसा विचार है पुराने कार्यक्रम दोबारा शुरू करने के बारे में, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। बहुत लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चलाते रहे, उसके बाद सवाल जो लोगों के आते थे वो ज़्यादातर एक जैसे होने लगे और हमें लग रहा था कि गूगल के और विकिपीडिया के ज़माने में कौन इंतज़ार कर रहा होगा कि जब हम जवाब देंगे तब वो सुनेगा। तो बहुत सारी वजहें थी कि हमने बहुत दिन चलाने के बाद उस कार्यक्रम को इसलिए रोकने का फैसला किया ताकि हम कुछ नया कर सकें।
तो चिट्ठियों में आज इतना ही, आप पता बताते चलें।
जी बिल्कुल, अगर आप हमें चिट्ठियां भेजना चाहें, यानी कि जैसा संदीप सोनी कह रहे थे पीले पीले पोस्ट कार्ड, तो डाक से चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमेशा की तरह हमारा पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk। आपकी राय में आज फिलहाल इतना ही। संदीप सोनी को और राजेश प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
तो ये थे आपके पत्रों के उत्तर। श्रीलंका की टीम कोलंबो में कुमार संगकारा को बेहतरीन विदाई देने में कामयाब नहीं हो पाई। भारतीय टीम ने कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को 278 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। इससे पहले मेजबान टीम ने गॉल टेस्ट में भारत को 63 रनों से हराकर पहली जीत दर्ज की थी। आदेश गुप्त की रिपोर्ट।
कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज भोजनकाल के थोड़ी ही देर बाद अमित मिश्रा की गेंद श्रीलंका के दुष्मंत चमीरा के पैड पर लगी और उसके बाद अंपायर ने जब आउट होने का इशारा किया तो मैदान में मौजूद तमाम भारतीय खिलाड़ी खुशी से झूम उठे और इसके साथ ही भारत ने 278 रन से दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 413 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी टीम 134 रनों पर पेवेलियन लौट गई। श्रीलंकाई बल्लेबाज आर अश्विन और अमित मिश्रा की घूमती गेंदों का सामना नहीं कर सके। श्रीलंका की दूसरी पारी में सबसे अधिक 46 रन सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने बनाए। भारत के लिए आर अश्विन ने 42 रन देकर 5 और अमित मिश्रा ने 29 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले कल भारत ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 325 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की। कल जब खेल समाप्त हुआ तब श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट खोकर 72 रन था, यानी आज भारतीय गेंदबाजों ने केवल 62 रन देकर श्रीलंका के 8 विकेट झटके। मैच समाप्त होने के बाद विराट कोहली ने कहा,
नहीं, हम कोशिश करेंगे इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ स्टिक करें। मुझे अपना एक केस याद है कि जब मैं इतने रन नहीं बना पा रहा था इंग्लैंड टूर के बाद, मुझे भी 4 नंबर पे पुश किया गया था कि जब सिचुएशन अच्छा होगा और मैं जाऊंगा खेलने और मैं थोड़े रन्स बनाऊंगा तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा और फिर मैं वापस 3 पे आ गया। तो आई थिंक वो एक प्लेयर के लिए फिगर आउट करना ज़रूरी है कि कौन उस पोजीशन पे उस स्टेज में बेटर परफॉर्म कर सकेगा। वही मैं बात कर रहा हूँ कि जिनका 5 पे भी खेल सकता है, 6 पे भी खेल सकता है, 3 पे भी खेल सकता है। हमें पता है रोहित 3 पे भी खेल सकता है, 5 पे भी खेल सकता है। इतना हमारे वर्सेटैलिटी है बैटिंग ऑर्डर में कि कोई भी किसी भी पोजीशन को टेकअप करने के लिए रेडी है और आई थिंक वैसा माइंडसेट होना ज़रूरी है अगर आपको मैचेस जीतने हैं तो।
अब जब भारतीय टीम जीत ही गई है तो कप्तान की सभी रणनीतियां सही है, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा चोटिल होकर बाहर हो गए हैं। उनकी जगह नमन ओझा और करुण नायर को टीम में शामिल किया गया है। फिलहाल मौजूदा सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और तीसरा टेस्ट मैच कोलंबो में ही 28 तारीख से शुरू होगा।
कोलंबो टेस्ट में भारत की जीत। और अब चलते चलते मुख्य समाचारों पर एक नजर।
बीबीसी समाचार। चीन शेयर बाजार की सुस्ती को लेकर निवेशकों की चिंता का असर दुनिया भर के कई शेयर बाजारों पर देखा गया। लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट के सूचकांक में गिरावट देखी गई। चीन के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई। भारतीय शेयर बाजार ने कई साल बाद एक दिन में सबसे बड़ा गोता लगाया। सेंसेक्स आज 1624 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने शरणार्थियों के लिए बनाए गए एक सदन के बाहर हिंसक प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए इन्हें शर्मनाक बताया है। नेपाल की दक्षिण तराई इलाकों में थारू समुदाय के साथ संघर्षों में 7 पुलिस वालों की मौत के बाद सेना को तैनात कर दिया गया है। केलाली जिले में थारू प्रदर्शनकारियों के कर्फ्यू तोड़ने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। ब्रिटेन के विदेश सचिव फिलिप हैमंड ने कहा है कि ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध अगले साल से हटा लिए जाएंगे। ईरान की राजधानी तेहरान में ब्रितानी दूतावास दोबारा खोले जाने के अवसर पर ईरान आए फिलिप हैमंड ने राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी बातचीत की। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। आज स्टूडियो संभाला था देवाशीष कुमार ने। सभी साथियों के साथ रेहान फजल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।